ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دی نا، اللہ نہیں لوگوں پہ ظلم کرتا، کچھ بھی ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. انسان سوچتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں سزا مل گئی، یہ ان کو کیوں نہیں، ان کو ایمان لانے کی توفیق اللہ نے دی. اللہ نہیں ظلم کرتا کسی لوگوں کے اوپر. دیکھو اللہ نے ان کو کان بھی دیے، ان کو آنکھیں بھی دی، کانوں کے باوجود کوئی بہرا ہو جائے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ عقل ہونے کے باوجود کوئی ایسا ہو جائے جیسے کہ بالکل عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. لیکن اپنی دنیا کی کاموں کے اور دنیا کے ہر طرح کی چیزوں کی عقل بعض دفعہ اتنی ہوتی ہے، اس کو ظاہر الحیات دنیا، جو دنیا کی ظاہری کا علم بہت ہے. قرآن بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے دنیا کا ظاہری علم تو جو مرضی پوچھ لیں، لیکن اگر آپ کو دین کی بات کرتے تو صاف کہہ دیتے نہیں بھی اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ وہ ہمارا تو فیلڈ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس کو جاننا ہی نہیں. اور کوئی بہت ہی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھ رہا تو وہ ادھر کی ادھر لا کے بولنے لگتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو وقت تھا، موقع تھا، انہوں نے ہر ایک دوسرے علم پہ محنت کی تھی، لیکن ایک قرآن، ایک دین کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس میں بھی کبھی محنت کرتے. بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، 14 سال، 16 سال، 20 سال، آج کل تو 12 14 سال تو کسی کی ہے ہی نہیں تعلیم، اتنی اتنی سالوں کی تعلیم ہے. کب سے ایک بچہ شروع ہوتا ہے، جب سے وہ یعنی تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے تب سے اس کو سکول میں ڈال دیتے ہیں، اور کب تک جوان ہوتے تک وہ پڑھتا رہتا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کب یہ ختم ہوگا نا پڑھائی کا، کب ختم ہوگا، کہتے ہیں پڑھنا ہی ہے. وہ ٹین ایج میں گیا، وہ جوان ہوا، لیکن کوئی اعتراض نہیں. مگر دین کے علم کے بارے میں فوراً کہتے ہیں کب ختم ہوگا نا یہ، کہ جیسے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے جو جس کو ہم نے اتار کے رکھنا ہے. ختم کرنے کی کیوں جلدی ہے؟ ختم کر کے کہیں بھاگنا ہے اسے؟ یہ تو روح کی غذا ہے، یہ تو زندگی کا ایک نقشہ ہے جس کے مطابق انسان نے چلنا ہے، یہ تو گائیڈ لائن ہے. تو اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے آیات بیان کر دی، اللہ نے تو اپنے کلام کو محفوظ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آتی تو مجھے پتا چلتا نا، میرے پاس آئی نہیں کوئی بات، اور محفوظ. لیکن اکثر لوگ انفسهم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ہے اپنی جان پہ، اندھے بہرے ہو جانا. یہ ظلم ہے اپنی جان پہ کہ انسان دو کشتیوں کا سوار ہو جائے، انسان کہے وہ نہیں نہیں آپ بھی اچھے ہم بھی اچھے. یہ ظلم ہے، ظلم ہے. انسان جو ہے عقل رکھتے ہوئے بے عقل بنا رہے، اور سب سے بڑا تو ظلم وہ کر رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت پر ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں سوال جواب حساب کتاب ہے، جنت ہے جہنم ہے، سب کچھ کے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر بھی اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور پھر بھی بے عقل بن گئے. اس کے بعد عقل بند ہو جاتی ہے. وہ تو ہیں ہی اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے جو نہیں مان کے دیتے، اور ان کو کیا ہو گیا جو مان کے بھی اس کے بعد نہ سمجھے. وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ، تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں سیکوینس آپ آیات کا دیکھیں، ایسے نہیں لگتا جیسے گندی ہوئی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کے بعد ایک. اچھا تم ایسا رویہ رکھتے ہو اور نہیں مانتے، تو اللہ نے تو کسی لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، لوگ تو خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا وہ کہ قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تم بھی. نہیں قیامت کے دن نہیں ہے، سوری، یہ ویسے ہی ایک حدیث قدسی ہے. پہلے یہ بات بتاتے ہیں پھر وہ والی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا، خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا. اور اس حدیث کے آخر میں ہے جو قیامت کے دن کا سین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو یہ تو تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں جمع کر رہا ہوں، फिर तुम्हें उनका बदला दूंगा। बस जो शख्स भलाई पाए आज के दिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो इसके सिवा कुछ और पाए तो फिर अपने आप को मलामत करे। ये मुस्लिम की रिवायत। तो किसी ने आपको नहीं रोका ना, किसी ने आपका हाथ नहीं रोका, किसी ने आपकी अकल को बंद नहीं किया, किसी ने आपके कान आंखें नहीं बंद की, आप खुद ही अंधे बहरे बने रहे ना, तो फिर किसको मलामत करना चाहिए। लेकिन ये शायद बातें आज समझ नहीं आएंगी, आज समझ नहीं आएंगी, उस दिन समझ आएंगी। यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा ना उनको, तब पता चलेगा कि अल्लम यलबसु इल्ला सातम मिनन नहार, कि वो गोया के नहीं वो ठहरे दुनिया में, यानी दुनिया की जिंदगी उनकी कितनी थी, उसमें कितना उन्होंने लाइफ स्पेंड की, इल्ला सातम मिनन नहार, मगर एक घड़ी दिन की। और जगहों पे आता है दिन की एक घड़ी या रात की, बस दिन का एक हिस्सा या रात का, बस इतना सा कहते हैं घंटे को, और सा एक हिस्से को भी कहते हैं, एक पहर को भी कहते हैं, यानी अ पार्ट ऑफ अ डे, एक होल डे भी नहीं, एक होल डे भी नहीं, हम एक दिन भी नहीं, ये नहीं कहेंगे हम तो बस एक दिन रहे थे, एक दिन का भी कुछ हिस्सा। ये बात उस वक्त समझ आ गई, आज क्यों नहीं आती, आज क्यों नहीं आती ये कि अल्लाह ताला देखिए आज दारुस्सलाम की तरफ बुला रहा है, लेकिन हमें परवाह नहीं, हम रीझे में ऐसी इन्हीं चीजों के लिए। लेकिन जिस दिन गैब का पर्दा उठ गया ना, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा ना, उस दिन लगेगा ये जो सारे हमने यहाँ पे क्या हमने वेस्ट कर दी, इतनी छोटी सी तो जिंदगी थी, उसमें अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेते तो कौन सा मुश्किल था, इतनी छोटी लाइफ में भी ना मैंने किया। अगर अगर पिछली भी अपनी जिंदगी देखें तो जितनी भी हमारी एज हो गई है, जाहिर है हम सब की, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी की 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, जितने भी साल हमने अभी तक दुनिया में गुजार लिए हैं, वो क्या लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है पलक झपकने पे, हालांकि वो भी साल थे ना, हर साल के 365 दिन आपने गुजारे ना, लेकिन अब क्या लग रहा है, पलक का झपकना। 100 साल के बूढ़े से भी आप पूछ लेंगे तो वो भी यही कहता है कि पता ही नहीं चला, कल की बात है अभी, कल की बात है अभी। तो वहां जाके जब असलियत खुलेगी ना, तब तो बिल्कुल ही ये दुनिया की सारी जिंदगी ऐसे लगेगी कुछ भी नहीं थी। अब ये इतने से क्या, एक साथ दिन की एक साथ में भी हमारे लिए मुश्किल है कि हम अल्लाह की तरफ आ जाए, या एक साथ दिन की है इसमें भी कोई ऐसा वक्त हो सकता है जो हम बेकार गंवा दें, जो हम वेस्ट कर दें, ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है, उसमें कौन वेस्ट कर सकता है। वो कहते हैं ना, मुझे बड़ी प्यारी बात हमेशा लगती है कि जिसके पास एक ही छागल हो पानी की, एक लेदर बैग है पानी का, ठीक है, और वो किसी डेजर्ट में है और दूर दूर तक और कोई पानी नहीं, तो वो उस पानी से अपने पैर नहीं धोता, उस पानी को कहीं ऐसे ही वेस्ट नहीं करता, उसको पता है ये मेरी लाइफ है, कितना उसको केयरफुली यूज करेगा, एक एक कतरे को उसके, क्योंकि तो उसको पता है और पानी नहीं मिलना, मैं जहरा में हूं। इसी तरह ये जिंदगी है मेरी बहनों, ये जिंदगी वो है जो एक दफा ही मिलनी है, इसके बाद नहीं मिलनी, और ये वन टाइम, और गिनी भी है, और एक साथ की है, और इस साथ को हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम उसे पैर नहीं धोने खड़ा हो जाएगा वो, यानी इसको हम इधर उधर नहीं लगा सकते, ओके, ये ही है जिसने के ऊपर डिपेंड करती है हमें हमारी हमेशा की जिंदगी, इनफिनिट लाइफ। तो देखें ये है जो हकीकत है जो वहां खुली है, ये है जो असल सच्चाई है, ये नहीं कि ऐसे लगेगा वहां जाके बस लग रहा है, नहीं, हकीकत यही है कि दुनिया की जिंदगी इतनी ही है, पलक झपकने की बात है, क्योंकि कयामत के दिन और जो वहां की जिंदगी है उसके मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी छोटी ही है, क्योंकि वहां पे तो बहुत लंबी है, समझ आई। और वैसे भी ये छोटी है, आप देखें हमारी तो वैसे ही बहुत छोटी है, हमारी तो एवरेज लाइफ अब वैसे ही देखें 60-70 साल है, वो है ना पुराने जमाने में, एक आती है इसराइली रिवायत कि एक औरत आई अपने वक्त के नबी के पास और उसने कहा मेरा बेटा 600 साल का होके फौत हो गया। वो इसके ऊपर बड़ी गमगीन थी, उन्होंने फरमाया कि तू इसके ऊपर रोती है, एक तो ऐसी उम्मत आएगी जिनकी उम्रें ही इतनी 60-70 साल होंगी। तो वो कहने लगी अच्छा फिर इतनी कम उम्र होंगी तो उनको तो घर भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ओहो, उसने सोचा यानी इसी दुनिया के अंदर अभी ऐसे लोग आए हैं जिनकी उम्रें इतनी लंबी थी तो उनको भी हमारी छोटी लगती, तो हम पता नहीं जाएंगे तो हमें कितनी छोटी लगेगी अपनी उम्र, ये अपनी जिंदगी कितनी मुख्तसर लगेगी। ऐसे ही लगेगा कि आंख बंद की और खोली और जिंदगी खत्म भी हो गई। और आप वाकई अपनी जिंदगी के ऊपर जरा गौर करके देखें कि इंसान शायद वक्त में भी बरकत जो खत्म हो गई है उसकी वजह से भी, कि इंसान एक पता भी नहीं चलता बड़ा हुआ, जाहिर बचपन तो कुछ समझ ही नहीं आता, खेल कूद में गुजर जाता है तो वो समझ ही नहीं आया उसको कि कब गुजर गया। जवानी पढ़ाइयों के अंदर, शादियां और बच्चों के अंदर गुजर गई, उसके बाद जब थोड़ी आंख खुली तो पता चला है बुढ़ापा भी शुरू हो गया, जिंदगी गुजर भी गई। इसी जिंदगी की कहानी है ये, इतनी तेजी से गुजर जाती है और फिर इंसान सोचता ही रह जाता है कि किधर चली गई, ये तो मेरे हाथों से ऐसे निकल गई जैसे आपने हाथ में रेत पकड़ी हो, फिसल गई आपके हाथ से। तो ये उस पानी की छागल की तरह है जिससे पैर नहीं धोने हमने, ठीक है, इसको बचा के कारामत तौर पे लगाना है क्योंकि यही हमारा सर्वाइवल है। ये था आराफूना बहीना हम, वो पहचान रखते होंगे आपस में। अच्छा फिर ये भी नहीं होगा कि एक दूसरे को जानते नहीं, पता होगा ये मेरे माँ बाप, ये बहन भाई, वो मेरे दोस्त खड़े हैं, वो फलां मेरे हमसाए, सबको पहचानते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ की वल्ला की वजह से पहचानना ही बंद कर दे, लेकिन मुसीबत ये कि पहचानने के बावजूद उनको नहीं पता होगा कि एक दूसरे की क्या मदद करनी है, हमने एक दूसरे के लिए आगे बढ़ के क्या करना। पहचान रखते होंगे आपस में तब भी एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस चीज के ऊपर और ज्यादा दुख होता है ना, एक तो इंसान को ये कि फलाने मुझे पहचाना ही नहीं, अगर पहचान लेती तो फिर तो जरूर वो मेरी हेल्प के लिए आती, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि उसने मुझे पहचान भी लिया था फिर भी उसने आंखें फेर ली तो कितना दुख होता है। कद खसीर अल्लदीन कद्दबू बिलिक़ा इल्ला, तहकीक यकीनन बड़े खसारे में वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया। जाहिर है इससे बड़ा क्या खसारा होगा कि वो जिंदगी जो आखरत के मुकाबले में सिर्फ इतनी सी थी कि जितनी आप उंगली, हदीस में क्या आता है, उंगली समुंदर में डबोएं और जब आप उंगली निकालें तो जो पानी उंगली पे लगा है ये दुनिया की जिंदगी, इतनी सी जिंदगी के लिए उन्होंने अपनी आखरत दांव पे लगा ली, इसके फायदे के लिए और इसमें गुम होके इसी के धंधों में अपनी अल्लाह से मुलाकात को भूल गए थे और इससे भी बढ़ के लोगों ने झुठला दिया, तो वो तो बड़े खसारे में, क्योंकि वो तो आज कुछ भी नहीं लेकर आए यहाँ के लिए, वमा कानू मोहतदीन, और ना वो हिदायत पाने वाले, उनको हिदायत ही नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये जल्दी खत्म हो जानी है और उसके बाद आगे जवाब देना जहाँ पे कोई काम ना आएगा, चाहे वो पहचान भी रहे हैं। तो देखिए हम आज कि हमारे वक्त किधर लग रहे हैं, हमारे माल किधर लग रहे हैं, हमारी जवानियां किधर लग रही हैं, हमारी जो हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास जो भी हुनर हैं, जो हमारे पास सलाहियतें हैं, जो हमारे पास अक्ल है, जो हमारे पास औलाद है, ये किधर लग रही है, किधर जा रहा है सब कुछ, यहाँ के लिए या अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। वह इमानुरी अन्ना का, अच्छा अब ये एक बात वो लोग कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब भी कहते थे ना हमें क़यामत है क़यामत है, तो अब क्या ले आओ ना क़यामत फिर, ले आओ ना क़यामत फिर, ले आओ ना अजाब फिर। तो उनको कहा गया, उनके लिए जवाब है कि वह इम्मा नूरी यन्ना का, अगर हम आपको दिखा दें ए नबी, अगर हम आपको दिखा भी दें, बाद अल्लदी नाइदुहुम, बाज वो चीज जिसका हमने उनसे वादा कर रखा है, यानी अजाब का इनको झटका दिखा भी दें आपके सामने आपकी जिंदगी में, औ न तवफ्फयन्ना का, या हम आपको फौत कर दें और फिर आपके जाने के बाद इनके ऊपर अजाब आए, इन एनी केस फइलैना मरजिउहुम, हमारी तरफ ही लौटना है हमको, वापस तो यही आना है। अने कुफारे मक्का जो इतने इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा, तो ठीक है हम आपके सामने ही इनके ऊपर अजाब ला दें या आपके बाद लाने, इससे क्या फर्क पड़ता है, आना तो इन्होंने वापस हमारे पास ही, अजाब आ जाएगा तो जिंदगी की मोहलत तो खत्म हो जाएगी ना, जिंदगी की मोहलत खत्म हो गई, कयामत आ गई तो जिंदगी खत्म हो गई, उसके बाद कोई अमल करने का तो वक्त नहीं होगा, तुम अल्लाह शहीद हो ना लामा यफालून, फिर अल्लाह ताला तो गवाह है उस पर जो वो करते हैं, अल्लाह ताला इनके अमाल से बेखबर तो नहीं है। वलिकुम लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, हर उम्मत के पास एक रसूल आया, हर बड़ी बस्ती में अल्लाह ने रसूल भेजा उनकी हिदायत के लिए। फइदा जाअ रसूलुहुम, फिर जब आ जाए रसूल उनका, कुदिया बैनहुम बिलकिस्त, उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब रसूल आ गया तो रसूल ने आके अल्लाह का पैगाम दे दिया हर उम्मत को, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हुज्जत तमाम हो गई, अल्लाह ताला ने उनका एक्सक्यूज जो है ना खत्म कर दिया, अब वो ये नहीं कह सकते अल्लाह हमें नहीं पता था, अल्लाह ताला कभी इसके ऊपर नहीं पकड़ता कि जब हुज्जत तमाम ना हुई है, लोग इनोसेंट है उनको पता ही नहीं, उनके पास कोई खबर देने वाला आया ही नहीं और अल्लाह उनको पकड़ ले, मगर जब रसूल आ जाए, उसने इसलाह की कोशिश कर ली फिर भी लोग ना माने, तो तब अल्लाह ताला उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करते, तब अल्लाह का अजाब आता। ठीक है, एक ये मानना है, इसका दूसरा भी एक मतलब है जो कयामत वाले दिन के हवाले से, और उस मतलब के मुताबिक क्या है, वली कुल्ली उम्मत इन रसूल, हर उम्मत के पास एक रसूल है, हर एक उम्मत का एक रसूल है। ठीक है, फईदा जाअ रसूलुहुम, जब आ जाएगा उनका रसूल, यानी उम्मत के साथ उनका रसूल आएगा, कयामत के दिन उम्मत भी होगी साथ उनके, उनके रसूल को भी पेश किया जाएगा, रसूल भी खड़ा होगा, जैसे है ना आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में असेंबली या कुछ होती है तो हर टीचर अपनी अपनी क्लास को लेके खड़ी होती है, फिर वो अपनी अपनी क्लास को लेकर क्लास रूम में जाती है, ठीक है, जो बच्चे उसके क्लास में होते हैं, इसी तरह एक रसूल है, वो उनके ऊपर निगरान बनाया, वो उनके ऊपर दाई बना के भेजा गया, अब वो उनके साथ कयामत के दिन आएगा, फिर उस दिन वो रसूल कहेगा कि मैंने तो पहुंचा दिया या अल्लाह, तमाम कर दी ना मैंने पहुंचा दिया, अब ये कयामत के दिन की बात है कि फिर उनके अंदर फैसला खुद ही अब ना हम बिलकिस्ती व हम लाए और हम, तो उनके दरमियान फैसला फिर कर दिया जाएगा, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ इंसान को वही मिलना है जो उसने खुद किया हुआ, अपने हाथों की कमाई मिलनी है वहां पे, जुल्म की फिक्र ना, ये दुनिया के अंदर ही जुल्म होते हैं, करे कोई तो भरे कोई, दुनिया में ही जुल्म होते हैं कि वो पकड़ा जा रहा है जो बेचारा मजलूम है और दूसरे दंडनाते फिर रहे हैं, ये दुनिया ही है जिसके अंदर जिनके बड़े हाथ होते हैं वो हर बात से हर जुर्म से ही छूट के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, वो यकूलूना मता हादल वादू इन कुंतुम सादिकीन, और वो कहते हैं कब आएगा वो वादे का वक्त ना अगर तुम सच्चे हो, कब आएगा। देखिए अब जैसे पहले बात हुई कि इनको बार बार ये इंतजार था कि आ जाए ना अब अजाब, आ जाए ना अब अजाब, जिसकी आप धमकी देते हैं वो कब आना है कह दीजिए, क्योंकि तो उनको ना ये एक तरीका मिल गया था कि इस तरह हम जिज करें इनको, एक दूसरे को यानी लेट डाउन करने के एक के तौर पे वो ये हरबा इस्तेमाल करते थे। हाँ तुम तो कहते हो ना, तो लाओ ना फिर। उनको पता था वो लाएंगे तो नहीं है। कुल कह दीजिए, ला अमली कुली नफसी दर्रों वाला नफा। अब इससे ज्यादा खुली क्या आयत हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा दें कि नबी आप कह दें मैं तो तुम्हारे लिए ना किसी नफे न, मैं अपनी जान के लिए ना किसी नुकसान का ना किसी नफे का मैं मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशाल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। यही इसी तरह की आयत ऑलरेडी गुजर भी चुकी है सूरह आराफ में। वहां पे नफा का लफ्ज पहले था, यहाँ पे नुकसान का पहले है। मैं नहीं मालिक हूँ, आप मुझे इतना बताइए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं थे तो क्या हमारे बन गए मालिक? हमारे सारे नफा नुकसान के वो मालिक हो गए, जिसको चाहे नफा पहुंचाएं, जिसको चाहे नुकसान पहुंचाएं। नबी भी उनसे मांगे, आप भी उनसे मांगे, वो आपको बचाने के लिए भी आ जाएं, कब्र में भी आ जाएं, हशर में भी खड़े हो जाएं, इस दुनिया में भी बिगड़ियां बना दें, बेड़ा पार लगा दें, सब कुछ जो वो खुद फरमाएं, जो बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दी। और क्या अल्लाह की बात हक के सिवा और कुछ हो सकती है? और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कही कि आप इनको कह दें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट एक सेंटेंस नहीं है। वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं थे। अगर मालिक होते तो आपके चचा आपके सामने इस तरह से बगैर कलमा पढ़े दुनिया से ना जाते। अगर आप मालिक होते तो आपके बच्चे आपकी जिंदगी में वफात ना पाते। और भी इस तरह की कई बातें, अगर आप मालिक होते नफा नुकसान के तो आपके सामने आपके सहाबा को टॉर्चर ना दिया जाता। अगर आप नफा नुकसान के मालिक होते तो उहद में शिकस्त ना होती। बेशुमार ऐसी चीजें हैं, आपकी बीवी हजरत खदीजा दुनिया से चली गई, वो ना जाती, वो आमुल हुजन ही ना होता, वो ताइफ का सफर ही आप ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? आप कह दें यानी अजाब लाना, या जिसका वादा दिया गया है वो लाना मेरे बस में कैसे है? मैं तो अपने भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। लेकिन इस बात से हम बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं एक आयत से। हम उनको तो ये जवाब है ही, लेकिन बाकी हम सबको भी इससे समझ लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, अब्दुहू व रसूल। और बंदा खुदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, जरूर करेंगे, मगर अल्लाह की इज़्ज़त से ही करेंगे। तो अपने अकीदे को सही कर लें कि वो अपनी मर्जी से हमें बचा बचा के ले जाएंगे और कोई हमें उस दिन पकड़ ही ना सकेगा। और या आज भी दुनिया में हम उन्हीं से मांगते हैं, वही आके हमें बचाएंगे, हम तो उनके उम्मती हैं। ऐसा नहीं है, कहीं इसका सबूत ही नहीं मिलता। ये बातें तो आपके सामने हैं, क्या इसकी ट्रांसलेशन में किसी को जिसने अरबी नहीं भी पढ़ी हो नहीं भी समझी हो क्या मसला है? ला अमलिकु ली नफसी दर्रा वला नफा, ये तो सारे उर्दू में भी ये लफ्ज है, मालिक भी अपनी जान का, अपने नफ्स का, जरर फायदा तो आम इंसान भी समझ सकता है। अगर ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मालिक, तो इतना बता दें मुझे कि कहाँ से आपने बना लिए अजमेर और हजरत अली हजबेरी को, और पता नहीं कौन कौन है, कहीं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी को, और बेशुमार और बुजुर्गाने दीन को ये बना लिया कि ये कुछ करते हैं हमारे लिए। कुछ इससे अंदाज़ा कीजिए, एक जगह पे उन्होंने लिखा हुआ कि एक मुसलमान का एक ईसाई से मुकालमा हो गया, बहस हो गई। ईसाई ने कहा भाई मेरे रसूल तो वो थे कि जो हाथ लगाते थे और जिंदा कर दे, शिफा याब कर देते थे और मुर्दे को जिंदा कर देते थे, तो तुम्हारे नबी के बताओ। उसने कहा अच्छा, हो गया हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के पास, उसने कहा देखे मेरे साथ तो ये मेरी मदद करे, मैं तो बड़ा फंस गया। तो अब ये देखें कैसी बातें जो उन्होंने बनाई हुई है ना, ये अंदाजा करें कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गए कब्र के पास, उन्होंने मुर्दे को हुक्म दिया, वो उठ के खड़ा हो गया। और कैसे हुक्म दिया मुर्दे को, कहा कि मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से नहीं अपने हुक्म से कहता हूँ कि तू खड़ा हो जा। और वो जब खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि देखे अगर एक उम्मती का ये हाल है कि एक मुर्दे को खड़ा कर दे जिंदा करके, तो रसूल का क्या हाल होगा फिर। अब लोग इसके ऊपर जो वाह वाह करते हैं, जो लोग इसके ऊपर मतलब कुर्बान होते जाते हैं, जितनी आप एग्जेजुरेशन बात की करेंगे ना, उतने ही लोग जो है ना वो दीवाने हो जाते हैं। तो अगर उम्मती की ये मतलब पावर्स हैं, तो उस नबी का क्या फिर हाल होगा, जो नबी जिसके बारे में अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाते हैं, नबी आप कह दें मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं हूं कि मैं अपने आप को कोई नफा पहुंचा सकूं या किसी नुकसान से बचा सकूं, मगर जो अल्लाह चाहे वही होता है, ये नहीं कि जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे, ऐसा नहीं है। जब वो मैंने आपको बताया था उन सहाबी ने कहा माशा अल्लाह माशा रसूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फरमाया कि तुम मुझे अल्लाह के बराबर करते, और ये तो ये हाल करते हैं कि अल्लाह का पकड़ा बचाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा बचा कोई नहीं सकता, ऐसी बातें करते हो फिर। और शिर्क किसको कहते हैं, इन्होंने तो औलिया कराम को भी इतना दर्जा दे दिया कि हय्या कयूम की जो ताकत है वो औलिया कराम में भी आ गई। अब देख लें कि कुरान कहता है कि ईसा अलैहि सलाम भी कहते हैं कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से, तो मौजज़ा था। और ये इन्होंने कहानियां क्या बना ली, अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह। और ये एक नहीं है, अनगिनत कहानियां आप इनकी किताबों में पढ़ लें आपको मिल जाएंगी, और वो जुबान ज़दे आम, वहां से थोड़े लोगों ने पढ़ ली, फिर मिंबरों पे बैठ के उनकी वैसी उनको कहानियां लोगों को सुना दी। अब लोग जो है वो ही कहानियों पे बिलीव करके, और आप जाहिर है उन्हीं को पूजेंगे ना, वो और किसको पूजेंगे जो इनके नफा नुकसान के मालिक, जिनको उन्होंने समझ लिया, जबकि उन्होंने कहा कि वो बेड़ा पार होने वाला था, उसका बेड़ा डूबने लगा, तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया कि मेरा नाम ले तो तेरा बेड़ा पार होगा, उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। मैंने कहा वहां तक तो अभी मैं नहीं पहुंचा, तो तू कैसे पहुंच सकता है। तो ये सारी मन घड़त कहानियां, ना उन बुजुर्गान दीन ने ऐसी बातें कही, ना उन्होंने ऐसे काम किए, लेकिन झूठ के पलंदे इन्हीं को कहते हैं कि ये फिर क्या जवाब देंगे। और इनके पीछे जो चलने वाले हैं वो भी कितने अंधे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो इत्तेबा करने वाले और जो उनके लीडर जो मिंबरों पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, ये उलमाए सू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशीन गोई कही थी कि उलमाए सू होंगे कयामत के नजदीक, जो जहन्नम के दरवाजों पे खड़े होंगे और लोगों को उसकी तरफ की दावत देंगे। लोग सोचते हैं ये मिंबर पे बैठ के जो भी बता रहा है ना, पता नहीं वो जमीन आसमान के कलाबे मिला दे तो उसके ऊपर सदके बारी कुर्बान होते जाते, और एक शोर हो जाता है मजमे में। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं मा शाह अल्लाह, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, तो मेरे और आपके केस में भी होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, तो फिर झुकना किसके आगे, अल्लाह के, और उसी के दर के हमेशा अपने आप को मोहताज रखना। ये नहीं कि अच्छा यहां से तो नहीं मिला अब मैं कहीं और चलती हूँ, अगर यहां से नहीं मिलता ना तो कहीं और से नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे सबसे बड़े दर, सबसे गनी और हर चीज के मालिक के दर से अगर आप हटते हैं तो उन मोहताजों के पास ही जाएंगे जो अपनी खुद के भी मालिक नहीं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात आ गई, तो बाकी तो सारे ही जित, चाहे औलिया अल्लाह हैं, चाहे वो कितने भी नेक बुजुर्ग हैं, चाहे वो सब उनसे तो नीचे है ना, तो फिर उनको कैसे ये मान लेंगे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हम ये बात मान सकते कि वो अपने नफे नुकसान के खुद ही मालिक थे। पता नहीं इन बातों की क्या वो तावील करते हैं, लेकिन असल में हमारी जाहिल अवाम जो है ये पढ़ती ही नहीं है, वरना वो उनसे पूछें जाके कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर मुद्दत है, एक डेडलाइन है, इदा जा अजलुहुम फला यस्ताखरूना साअतन वला यस्तकदिमून। ये भी बात पहले आ चुकी है सूरह आराफ में। हर उम्मत की एक वक्त है मुकर्रर, वो उस अपने वक्त मुकर्रर से ना आगे ना पीछे हो सकती, जैसे इंसानों की है ना एक जिंदगी की लाइफ स्पैन है, इस तरह कौमों का भी है। आप देख लें कई कौमें दुनिया में आई चली गई, कई को अल्लाह ताला ने मौका दिया अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का, कईयों के ऊपर अजाब आ गए और वो खत्म कर दी गई, और जब अजाब आए तो फिर उसके बाद एक घड़ी भी आगे और एक घड़ी पीछे नहीं हुई। तो इसलिए तुम ये ना सोचो कि अच्छा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पता नहीं आएगा ही नहीं, या पता नहीं हमसे कोई कयामत ही टल गई, या हम जो मर्जी करते रहे इससे क्या फर्क पड़ता। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.